أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج بڑی محبت سے اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہاں شکر ادا کرتے ہوئے، دل میں اداسی لیکن اندر ایک احساس سے تشکر لیتے ہوئے ہم شروع کریں گے تیسواں پارہ، اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں برکت دے. قرآن کا یہ سفر جو شروع ہوا تھا آج پورا ہو رہا ہے، اسی طرح ہماری زندگی کا بھی انجام بالخیر ہو. چلیں تو کٹ جاتا ہے سفر، جس طرح ہمارا بچپن گزر گیا ہمیں نہیں پتہ چلا، جوانی آ کے جا رہی ہے، اب تو چلی گئی ہے میرا خیال ہے. کس کس کی ویسے جوانی چلی گئی ہے؟ ماشاءاللہ، ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی ہم سب جوان ہیں الحمدللہ. دیکھیے جس کے حوصلے جوان ہوتے ہیں نا، اور میں ایک آپ کو اتنی راز کی بات کہہ کے پارا شروع کراؤں گی کہ قرآن کے ساتھ اب جس عمر میں نتھی ہوتے ہیں نا، مثلا 20s میں قرآن آپ کی زندگی میں آیا اور آپ کی لائف میں چینجز آئے، ہو سکتا ہے نا کسی کا 25 میں آئے گا، کسی کا 30 40. جس عمر میں یہ جملہ لکھے ہو، یہ بڑا اہم جملہ ہے. آپ سب بڑے موٹیویٹ ہوں گے اور اپنی بچیوں کو تو آپ پھر 15 16 سال کی عمر تک ہی رکھیں گے قرآن کی طرف. جس عمر میں آپ کو قرآن سمجھ آتا ہے، آپ کے دل پہ اترتا ہے نا، آپ کی عمر وہاں رک جاتی ہے. یو ول فیل ایور ینگ اگر آپ کو جوانی میں مل جاتا ہے. اگر آپ 20s میں لیتے ہیں نا تو آپ کی ایج 20s پہ رک جاتی ہے، 30s پہ 30s، 40s 40s، 40 میں تو وہ قرآن کا ایک کہہ لیجیے نا کہ جو اثر ہے، جو ست ہے نا، وہ نظر آتا ہے. کیونکہ انبیاء کرام کو بھی نبوت 40s میں ملی تھی. تو جتنی جلدی شروع کریں گے نا اتنے جوان رہیں گے، ینگ رہیں گے. لوگ سوچیں گے آپ کی ایج کیا، آپ کس عمر کے. آپ اپنے ہم عمر جو آپ کی کزنز ہیں، آپ کی دوست ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی ریلیٹ کر کے دیکھ لیں کہ قرآن والے چونکہ پازیٹیو ہوتے ہیں، اس میں کوئی راز نہیں ہے. ویری سمپل، تفکرات ختم. ہمیں کیا چیز بوڑھا کرتی ہے؟ فکر، بچوں کی فکریں، فلاں کی فکریں. دوسری چیز ہمیں غم پریشان رکھتے ہیں نا، نہ غم نہ فکر. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا وعدہ قرآن کو سمجھ کر اس کے مطابق جینے والوں کے لیے. تیسری چیز، ہمیں اندیشے آتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا اس بچے کا، یہ بچہ ہوا بیمار نہ ہو جائے، فوت نہ ہو جائے، اچھا بچی کی شادی ہوئی، گھر نہ، اندیشے بھی ختم. چوتھی چیز، وسوسے انسان کو بوڑھا کرتے ہیں. ایسے بیٹھے لوگ وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں. ہمارے پاس کئی لوگ کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، ایسے وسوسے آتے رہتے ہیں، پتہ نہیں یہ ہوگا، میاں گھر نہیں، فون کرتی رہیں گی، پتہ نہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. اور اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے اس ماں پہ اور اس بچے پہ جس کا ایک ہی بیٹا. نہ وہ بچہ نارمل رہتا ہے، نہ ماں نارمل رہتی ہے، ہر وقت اس کا دل بچے میں، اور بچے کو ہر وقت ماں ایک سائیکل کیس بن کے پال رہی ہوتی ہے. نہیں. اور سب سے بڑی چیز آپ کو بتاؤں، سب سے بڑی، ابھی چار لکھائی ہیں، پانچویں بھی لکھ لیجئے، قرآن سے جڑا ہوا انسان کیوں ینگ، فریش، انرجیٹک، ہیلدی محسوس ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کی یہ دنیا کے سارے غم چھوٹے 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 ہو جاتے ہیں، اور آخرت کا غم بڑا ہوتا ہے. آپ اپنے اسکرین پہ ایک ونڈو بڑی کریں گے تو دوسری سب چھپ جائیں گی. میرے پاس بھی آپشن ہے، آپ کے لیپ ٹاپس میں بھی ہوگی. میں اس میں اپنی ایک وقت میں 5 اسکرینیں بھی کھول سکتی ہوں. میں کس کو بڑا کروں، کس کو چھوٹا کروں، کون سی، یہ سب ہو جاتا ہے نا. آج کل کیا مشکل ہے، جب آپ آخرت کو سب سے سامنے رکھیں گے نا، فکر آخرت، تو پھر فکر دنیا پیچھے. جب آپ کو فکر جنت پڑ جائے گی نا کہ مجھے جنت چاہیے، تو دنیا کی جنت ملے نہ ملے، آپ کو کوئی سونے کے کاؤچ پہ بٹھا دے یا آپ کو کوئی لکڑی بینچ پہ بٹھا دے، ایک ہی برابر ہے. جب آپ کو آخرت کی جہنم کا فکر لگتا ہے نا، تو دنیا جہنم بنے یا جنت بنے آپ کے لیے بالکل پیچھے. یعنی آپ ان ساری چیزوں کو فیل کر کے آج کا پارا سنیں گے تو پھر آپ انجوائے کریں گے. تو آئیے اللہ سے دعا کر کے شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دور قرآن 2025، DQ 2025. آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کی رحمت، اس کے فضل، اس کی احسان مندی کے جذبات کے ساتھ جز 30 30th جز عم یتساءلون کریں گے. اور اینڈ پہ دعا بھی اللہ نے جتنا موقع دیا وہ ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا، اللہ کرے وقت میں برکت دے. عام دنوں میں جتنا میٹر ہوتا ہے آج اس سے ڈبل ہے میرے پاس. اللہ وقت میں برکت دے گا، سارا کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. بڑی محبت سے پڑھتے ہیں درود شریف. آج کے درود شریف میں جو احساس رکھنا ہے کہ اللہ اپنی رحمتیں نازل کرتے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود شریف تو ہم نے پڑھا، اس کے بارے میں ایک قول آتا ہے، شمس الحمیسی اذا تغیب زد فی صلاتی علی الحبیب. جب جمعرات کا سورج غروب ہو جائے تو محبوب پر درود کی تعداد کو بڑھا دو. اب دن دیکھ لیجیے، آج کون سا اور کل کون سا ہے، اور جہاں جہاں بھی یہ پارا جائے گا، لیکن ہر جمعرات کو درود شروع کر دیا کریں، اور اس سے ایک اپنے لیے عادت بھی اختیار کر لیجیے کہ جمعے کو کثرت سے درود پڑھنا ہے. آپ کہتے ہیں کہ عصر کے بعد ویسے بھی اگلے دن کے اشارے شروع ہو چکے ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کیوں نہ پڑھیں؟ کیونکہ آپ سراج منیر تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کا چراغ بنا کر بھیجا. آج کے پارے کے ساتھ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام دیکھیں اور اس پارے کو پچھلے پارے کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں، تو پورا پچھلا پارا دعوت اللہ پہ تھا. دعوت اللہ، ربانی ترتیب، رب نے جو ترتیب دی تھی اسی کے مطابق چلے تھے. آج اس پارے کے اندر جو بنیادی چیز آپ کو دکھے گی، مرکزی مضمون ایک لفظ ہے، اپنے اوپر لیجئے، فکر دل میں رکھتے ہوئے، انجام. آپ کا میرا انجام کیا ہوگا، رزلٹ کیا ہوگا؟ رزلٹ کارڈ جب ہاتھوں میں ملیں گے تو میرے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ قیامت کا دن اس پورے پارے کا مین تھیم ہے. پہلی سورت سے پتہ چل جائے گا، اما یتسالون سے. قیامت کا دن کیا ہے؟ عمل کا دن ہے؟ نہیں. پیپر دینے کا دن ہے؟ نہیں. 29ویں پارے کے ساتھ ریلیٹ کیجیے، 29ویں پارے کی پہلی سورت میں تبارک الذی بیدہ الملک کے ساتھ ہی کیا کہا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ادھر کیا تھا کہ تم ایک کمرہ امتحان میں ہو اور یو آر بینگ واچ، تمہارا ایک ایک ایکشن دیکھا جا رہا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، اچھے کام کرتے ہو کہ برے کرتے ہو. اس پارے کے شروع میں اما یتسالون عن النبأ العظیم، قیامت. دنیا کیا ہے؟ امتحان. آپ اور میں اس وقت پیپر دے رہے ہیں، ایک ایک سانس لکھی جا رہی ہے، ایک ایک آنکھ کا اشارہ، کان کا، دل، جو بھی چیزیں بندے کے بس میں وہ نوٹ ہو رہی ہے. قیامت کیا ہوگا؟ یہ ریزلٹ ڈے ہے، آپ کی گریجویشن ڈے ہے. رپورٹ کارڈ کی ڈسٹریبیوشن ہوگی، اور اس کے بعد پھر جنت ہوگی یا جہنم ہوگی، دو میں سے ایک، نو تھرڈ. ہاں، کچھ لوگوں کے پوسٹ پون ریزلٹس ہوں گے، کچھ عرصے کے لیے ان کو آراف کے مقام پہ روک لیا جائے گا، جس کا صورت آراف میں ذکر سنا، اور ابھی ریسنٹلی آپ نے سورہ حدید میں بھی سنا تھا، وبینہما حجاب، دیوار کی بات ہے، اور وہاں بھی کچھ اشارہ ملتا ہے کہ کھڑکی کھلی ہوگی تو اندر رحمت اور باہر عذاب، کچھ ایسی بات یاد آ رہی ہے، بس وہ بھی علماء کے مطابق کہ وہ بھی ایک عراف کا مقام ہے. اس کے بعد آپ کا میرا دو میں سے ایک مقام ہے، یا ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں. میں اس جملے کا واحد کسی کے سے کہ میں یا جنت میں جاؤں گی یا جہنم میں جاؤں گی. تیسرے سٹیپ پہ اپنا نام لیجئے، عفت یا جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی. جنت میں جا کر کیا درجے ہیں اس کو بھول جائیے فی الحال، جو مل جائے دروازے سے پاؤں اللہ اندر کرا دے. جہاز کے اندر پاؤں رکھ دیں، اس کے بعد سیٹ دے نہ دے لے ہی جاتے ہیں نا ساتھ. جب دروازے بند ہو جاتے ہیں، رب منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ فلائٹ بھی گئی، ٹکٹ بھی ضائع ہوئی، وہ ترلے منتے کر لے، نہیں جانے دیتے. اگر ہماری جنت کی فلائٹ مس ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اور اللہ نہ کرے کہ کوئی اپنے نام کے ساتھ یہ سن لے کہ فلاں جہنم میں جا چکا ہے. دنیا میں کئی لیولز ہیں جینے کے، بلینئرینز، ملینئرینز، پھر اس کے بعد لکھ پتی، لکھ پتی سے ککھ پتی کے بیچ میں میڈیوکرز ہیں، متوسط طبقہ ہے. آپ اپنی زندگی پوری دیکھ لیجئے، آپ کو ہر طرح کے لوگ دکھیں گے. کلاسیفیکیشن اور اللہ نے اس لیے کی کہ دنیا کا نظام چلتا رہے، ہر ایک اپنے آپ کو اپنی جگہ پہ سیٹ کرے. قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا. مرنے کے بعد بس دو انجام ہیں، یا جنت یا جہنم، ہار ہے یا جیت ہے. اب یہ آپ سورت تغابن میں پڑھ کر آئی ہیں پیچھے 28 پارے میں کہ کون جیتا کون ہارا، یہ اس دن جا کے پتہ لگ جائے گا. سسپینس بھی بہت ہوتا تھا ہمیں اپنے دور میں، مجھے یاد ہے اس دفعہ فرسٹ کون آئے گا. ایک ہی کوئی سسٹر ہوتی تھی، موسٹلی وہی فرسٹ آتی تھی، फिर अगली दफा भी आई। फिर क्या हुआ कि जब मैट्रिक का एग्जाम था तो दिल में था वो ही फर्स्ट आएंगी, लेकिन पता चला वो सेकंड और थर्ड भी नहीं आई। भला क्यों? क्योंकि बाहर वालों ने पेपर चेक किए। स्कूल के और टीचर्स का रोज का रेपो होता है ना, मैं भी अगर आपके पेपर चेक करूँ तो मैं आपकी क्लास की पार्टिसिपेशन की वजह से मुतासर हो सकती हूँ कि बहुत एक्टिव है ये, बहुत पाबंद है, ये आती थी जाती है, हो सकता है पेपर चेक करते हुए लीनियंसी आ जाए। और पहले ही जहन में होता है कि चूंकि ये पिछले कई साल से फर्स्ट आ रही हैं तो यही आएंगी। बोर्ड के पेपर में ऐसा नहीं होता। अगला रख लीजिए, हमने सूरत मुल्क के शुरू में ये बात पढ़ ली थी कि जिंदगी का इम्तिहान मुश्किल है, लेकिन इम्तिहान लेने वाला मुमतहिन वो बड़ा गफूर और रहीम है। पहली आयत में हमने पढ़ लिया था, जब दुनिया में कोई इंसान अपनी शाकिला या खुदा दाद सलाहियतों के मुताबिक दी बेस्ट एफर्ट करता है तो अल्लाह उसके मुताबिक टेस्ट करेगा। मिसाल दे रही हूँ कि इमाम काबा, कोई भी है, मोहब्बत से कहती हूँ इमाम सुदेस, हरम में एक नमाज पढ़ाते हैं। एक वक्त में हम रफली स्पीकिंग कह लेते हैं कि हरम में 10 लाख लोग होते हैं। इमाम साहब की अपनी नमाज, 10 लाख लोगों की नमाज, उसको ज़रब दे दीजिए 1 लाख नमाज से। तो इमाम साहब अगर 3 फर्ज मगरिब के 7 मिनट में पढ़ा के सलाम अलैकुम कहकर हटते हैं तो उनके अकाउंट में कितनी नेकियां जाती होंगी, आप बाद में जमा तफरी कर लीजिएगा। जरबों पे जरबे, जरबों पे जरबे, क्योंकि इनको अपॉर्चुनिटी मिल गई, ये इधर थे, अल्लाह ने इनका चुन लिया। अब उनका इखलास, उनकी तजवीद, उनकी सारी चीज़ें, प्लस उनका यहाँ होना, कोई इतनी ही अच्छी तजवीद, इतनी ही अच्छी स्किल्स वाला बंदा बैठा है पाकिस्तान के किसी गांव में, जहाँ मस्जिद इतनी सी है कि अगर 20-25 लोग भी आ जाएं तो कमरा भर जाता है, और 50 लोग टोटल कैपेसिटी के हैं। रमज़ान में 50 के 50 आए, उसी इखलास के साथ जिसे इमाम सुदेस अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाते हैं, उसी बेहतरीन खूबसूरती मोहब्बत के साथ उसने भी पढ़ा। अब इसकी ज़रबें कितनी लगनी है? एक अपनी, दूसरों की मिला लें तो वैसे तो हमारे कल्चर में 27 नमाजें मारूफ हैं, लेकिन जो मोर ऑथेंटिक राय आती है वो 25 है। 25 हो गई अपनी, 25 अरब 50, ये उसका आउटकम है। अब क्या हुआ आप खुद समझे, ये कैलकुलेटर ख़त्म हो जाएंगे, लिख के रख लीजिए। आज तो जो मैं इसकी सोच लेकर आई हूँ ना, अगर अल्लाह मेरे मुंह से वो बातें निकलवा दे जो इस वक्त मेरे दिल में उबल रही हैं, दीन की रूह है ये। आप नमाजों पे नमाजें पढ़ते रहें, आप आयत करीमों पे आयत करीमें पढ़ते रहें, आप सलातो तस्बीह पढ़ते रहें, आप हर साल अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी दी उम्रा करते रहें, आप यहाँ आकर महीना रहकर 10-20 उम्रे करके चले जाएं, ये एक तरफ होगा। लेकिन हारा कौन, जीता कौन, ये दूसरी तरफ होगा। आप किसी के मरने के ऊपर कहते हैं 50 कुरान पढ़कर मरहूम की रूह को इसाले सवाब किया गया, क्योंकि वो बड़ी मारूफ शख्सियत थी और कुछ सियासी शख्सियत थी, सारे मुल्क में उनके कारिंदे का कुरान खानियाँ कराते, उनके लिए पढ़ते पढ़वाते हैं, और फिर टीवी पे कवरेज भी आती जी फलां इतना बड़ा फौत हुआ तो उसके लिए जी 50,000 कुरान पढ़ेंगे पढ़ेंगे, ठीक है, इट्स फाइन, नो वरीज, जा रहे नहीं जा रहे इस वक्त ये बहस ही नहीं है, बट एंड पे हारा कौन और जीता कौन, ये लग स्टोरी है। नहीं समझे कि हमारा मालनामा इस ही पासवान तक पहुंचे ना, बैतुल मामूर तक हमारा मालनामा नेकियों से भर जाए, इसके बाद भी हारा कौन जीता कौन, ये लग स्टोरी है। कोई एक बीच में रुकावट हो सकती है, धड़ाम से बढ़ेगी सारी वो आपकी बैतुल मामूर तक की नेकियां। कोई एक जुल्म हो सकता है, हक तलफी हो सकती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बंदा अपनी मुंह से एक कलमा ऐसा निकालता है कि वो बिल्कुल जन्नत के करीब होता था लेकिन जहन्नुम में जाएगा, और एक ऐसा कलमा निकालता है अपोजिट है, जहन्नुम के करीब जन्नत में जाएगा या जन्नत के करीब था तो जहन्नुम में जाएगा। ये सोच के बोलिए, आपका मेरा ये जो शुतर बेमुखार हर बात पे अपनी राय और अपने तबसरे और हीबतें, और मैं कहूंगी आज के हीबतों का सफा फाड़ के निकलिएगा इस दौरे कुरान से। हक तलफी, कोई एक ही ना, दो भाइयों का आपस में 3 दिन से ज्यादा ना बोलना, ये सारी चीजें क्रॉस मार्किंग कराएंगी आपकी मेरी। जिस दिन ये शऊर आता है ना, तो फिर हम नेकियां तोल तोल के बलिश्तों से नाप नाप के नहीं करते, जो माफ करें हमारे इंडो पाक कल्चर में हम तरावी वहां पढ़ते हैं जहां जल्दी भी पढ़ी जाए और पारा भी पढ़ा जाए, चाहे अरब ठीक है कि नहीं। और आप किसी अरब मस्जिद में जाकर नहीं देखते आजकल, एक कहीं एक रुकू पढ़ाते, कहीं आधा पढ़ाते, कहीं आधा सपारा पढ़ाते। हम गिनने वाले लोग हैं, हम बैयर करते हैं, उम्रे से जाएंगे, फिर लोग आएंगे, फिर हम उनको रूह अफ़ज़ा पिलाएंगे, वो हमारे लिए एक मिठाई ले आएंगे, बादाम ले, फिर वो कहे हाँ बहन सुनाओ, फिर हम कहेंगे इतने चक्कर किए, हजरे अस्वद के बोझ से लिए, मैंने इतने उम्रे किए, अच्छा कोई बिशारत हुई। आज आप देखिएगा, अब ज़रा अभी जब लोग एतकाफ़ में बैठना शुरू होंगे, लोग एतकाफ़ वाले को क्या पूछते, जैसे शायद वो अल्लाह के साथ वो राजदान बन गए, कोई इशारा हुआ है, कुछ देखा है, कुछ नज़र आया है, वापस आइए। ये सब अपनी जगह, लेकिन हारा कौन और जीता कौन, इट्स डिफरेंट स्टोरी जी। ये होने वाला है क्यामत के दिन, क्योंकि एंड रिजल्ट देखिए ना, किसी के मिसाल के अकाउंट में 10 लाख रुपए भी जमा कराते हैं, ये 10 लाख नेकी है, कोई भी कोई तरीके की जे कर दी, लेकिन क्या उस 10 लाख के वजह से वो फलां चीज हासिल कर सकता है जो लेना चाह रहा है, ये श्योर नहीं। तो इसके बदले ये क्यों नहीं कहते हैं कि रब्बी भी नहीं लींदा का बैतन फिल जन्ना, अरे अब तू मुझे जन्नत में घर दे दे। हम बीच की चीजें लेते, मरने वाले के लिए अल्लाह के नबी ने कहा कि क्या कहो, अल्लाहुम्मग़फिर लहू वरहमहू वाफ़िही वाफ़ु अन्हु वक्रिम नुज़ुलहू वबस्सिम मुदख़लहू वाबदिलहू दारन खैरा मिन दारहू। मैंने इस वक्त अपने सब जो मेरे जहन में आ रहे हैं और आप सबके लिए नीयत किए, हमारे जितने प्यारे चले गए अल्लाह उनको बख्श दे। आज कोशिश करेंगे दुआ बीच बीच में हो, जो लोग ये इंतजार करते हैं ना दुआ कब होगी, तो उनको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बीच में दुआएं कर लें। कुछ जरूरी है कि आखिर में आमीन करके फिर लंबी दुआ रोएं धोएं करें, जहां जो दिल में दुआ आएगी उसको कर लेंगे। और ये जो दुआ है ना कि बख्शिश मांग लो, मरने वाले के लिए बख्शिश मांग लो, ये आउटकम है। एंड पे आप क्या चाहते हैं, 10 कुरान करके वो क्या हो, बख्शा जाए, बख्शे जाने के लिए कह दें अल्लाह बख्श दे। आप आखिरी मिसाल दे देती हूँ कि एक बच्चा है, उसने पेपर दिए हैं और उसके पेपर में कोई कमी पेशी है, माँ बाप किसी की सिफारिश डालते हैं, कोई एग्जामिनर को तरले मिनते करते हैं, इसको 10 नंबर और दे दो, किसी को कहते हैं इसके फलां सब्जेक्ट में 5 और दे दो, किसी को कहते हैं 7 दे दो, दे दो दे दो, तो दे दिए 10, तो भी क्या हुआ, एंड पे चाहिए क्या कि वो पास हो जाए, उसकी कमी दूर हो जाए। बस मगफरत बड़ी चीज़ है, हम नेकियां दे दे के भी, तो दे दो नेकियां, जाओ तुम दे आओ 1.25 लाख नेकी दे के आओ अगले को, दे दी, अल्लाह कहता है जाओ फरिश्तों मैंने इसके लिए लिख दी, नीयत अच्छी थी, इरादा अच्छा, लिख दी लिख दी, व्हाट कम, अल्लाह ताला ये देखिए इस बंदे के अंदर तो ये वसफ था, अच्छा सब नेगेटिव मार्किंग कर दो। तो याद रखिये उस दिन सिर्फ पॉजिटिव मार्किंग नहीं होनी, नेगेटिव भी होनी है। आप जितनी गलतियां करते हैं ना, उन गलतियों से आपके नेकियों के असल के नंबर भी कटते हैं, आपकी लोग नेकियां देख रहे होते हैं, अल्लाह आपके गुनाह भी जानता है, लोग आपकी वो नेकियां कर रहे होते हैं जो आप कर रहे हैं, अल्लाह वो भी देख रहा होता है जो आप कर सकते थे और नहीं किया। अब इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट क्या दूं मैं आपको, आप कहते हैं हमने कितनी नेकियां की इस साल, और माशाल्लाह आप जद्दा वालों को अल्लाह बरकत दे, आपने दौरे कुरान लाइव बैठकर सुन लिया, ये नेकी का एक दरवाजा खुला है आपके लिए। ये मत सोचिएगा कि ये नेकी साल दौरे कुरान 2025 की नेकी हमारे लिए काफी हो गई है, असल इम्तिहान आपका इसके बाद है, क्योंकि सुम्मा लतुसलुन्ना यौम इज़िन अनिन नईम, फिर तुम उस दिन नेमतों के बारे में सवाल किए जाओगे। तो इस पारे के मेन थीम में दूसरी चीज लिख लीजिए, इज्जत मटेरियल में नहीं मोलैरिटी में है। हम आज दुनिया में लोगों को दुनियावी चीजों के पीछे भागता देखते हैं, क्यों, इससे इज्जत बढ़ेगी, वो गाड़ी हो, वो घर हो, आपके हाथ में पकड़ा हुआ फोन हो, क्यामत के दिन आप के सामने ये बात खुल के आ जाएगी कि जिस दुनिया, जिस दुनियादारी, जिस मेटीरियलिज्म के पीछे मैं भाग भाग के भावी हो गई, हाँ भाव के क्या हो गई, वो तो एक तरफ पड़ा है। क्या कहा था 29वें पारे में एक शख्स ने, हलकन्नी सुल्तानिया, और एक जुमला क्या बोला था, मा अगनानी मालिया हलकन्नी सुल्तानिया, फखुजूहु फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउ हसबू नज़ीरान फसल को। आज ये बहुत बड़ा बना फिरा है, इसको पकड़ो, इसके ना माल काम आया, ना इसकी चुदराहट यानी इसकी सरदारी, कुछ लीडरशिप किंगशिप कुछ काम नहीं आई, और आज ये इतना परेशान है, क्यों, इसको पकड़ो और इसको 70 हाथ लंबी जंजीरों में बांध दो, तो मोलैरिटी पैदा करें। आज के पारे में आपको कई नुक्ते मिलेंगे, नोट कीजिएगा कि शराफत की कीमत होगी। फिर अगली चीज़ इस पूरे पारे में आपको बार बार दिखेगी, नेकी बदी नेकी बदी, फल हमहा फजूर हा व तकवा हा कद अफलह मन ज़क्का हा, कि नेकी और बदी नेकी और बदी। और साथ ही आपको एक चीज़ ज़रूर मिलेगी इस पारे में, फल हमहा फजूर हा, ये किसकी कैफियत है, नफ्से अम्मारा की, व तकवाहा, किसी के नफ्स में अल्लाह ने तकवा डाला, किसी के वक्त में वो गुनाह में होता है। तो नेकी नफ्स मुतमईना की गजा है और बदी नफ्स हमारा की। तो इस बारे में आपको नफ्स की तीन मुख्तलिफ कैफियतों की जगलिंग के बाद जो कॉन्सेप्ट मिलेगा वो क्या है, लिख लीजिए। नफ्स मुतमईना की जीत और शैतान की हार, ये गोल है बस। कि अल्लाह ये नफ्स से पीछे जान छुड़ा मेरी, और वो शैतान जिसने डे वन पे कह दिया था ना मेरे अम्मी अब्बू को कि मैं आपके बच्चों को आग में डालूंगा, तू मुझे उससे बचा ले। ये है जिंदगी का खुलासा। सारी जिंदगी बंदा शैतान से और अपने नफ्स से लड़ाई करता करता एंड पे जिस मुकाम पे पहुंचेगा अल्लाह ताला उसके साथ वही मामला कर देगा। और इसके साथ ही आपको पता है कि 30th पारे में कितनी सूरतें हैं। पहली सूरत का नंबर याद है आपको? 78, और आखिरी सूरत 114। और आप इस पूरी चेन को अगर देखेंगे ना तो इसमें सूरत नबा से लेकर सूरत इखलास तक जो बातें आज मैं उसको अलग अलग नहीं दूंगी, वो बीच में खुद ही आएगा। आप खुद देखिएगा कि आज के पारे की सूरतों में मोस्ट ऑफ दी सूरास कियामत और इंजाम, हशर नशर, इंसान का क्या होगा। मक्का वाले चूंकि नहीं मानते थे कियामत को, तो अम्मा यतसाल उनसे बात शुरू की जा रही है कि ये आपसे झगड़ा करते हैं, इनको कह दो कियामत आने वाली है। फिर सूरत नाजियात में इंसान की रूह निकलने की बात है कि कैसे अच्छे बंदे की रूह निकलती बुरे की निकलती। फिर सूरत अबस में मोलैरिटी की कीमत है, तलब जिसके अंदर सच्ची होगी अल्लाह उसको जन्नत देगा। तो आज ये सूरतों का जो इंट्रो है ना, ये हर सूरत के शुरू में करेंगे क्योंकि इस बारे में हमेशा हमें स्टाइल चेंज करना होता है। हाँ, लेकिन बड़ी मोहब्बत से कहिए कि मोहम्मद अरबी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की सारी कशमकश, आपने ज़िंदगी में जो भी अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया उसको इस्तेमाल किया। पिछले सेशन में हमने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर मज़ालिम सुने थे, किस तरीके से उनको तकलीफ़ दी, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अल्लाह सुबहान तला ने ज़रिया बनाया ऐसे बेचारे दबे हुए पिसे हुए लोगों को छुड़ाने का। सिर्फ बिलाल को ही नहीं, कई और गुलाम थे जो मुसलमान हो चुके थे। अच्छा, ये गरीब गुरबा और गुलाम क्यों पहले मुसलमान हो जाते थे? अबू लहब नहीं हुआ, अबू जहल नहीं हुआ, उतबा नहीं हुआ, शैबा नहीं हुआ, रबिया नहीं हुआ, उतैबा नहीं हुआ, ये क्यों हो गए? एक ये भी बात समझ लीजिए, जो कह देते कि जिनका बहुत छोटा सर्कल होता है ना जिंदगी का, रेड़ी लगाना, छाबड़ी लगा ली, प्लम्बिंग कर दी, उनके कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते इस्लाम के साथ। उनको सूद का कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको बैंकिंग का कोई इश्यू नहीं, उनको अल्लाह ताला ने बहुत छोटे से सर्कल में रखा होता है। ये ऐसे जैसे मुल्कों में कोई भी वजीर आजम बन जाए, मजदूर को क्या लगे, उसको तो दिहाड़ी कमानी है, जमींदार को क्या लगे, एक ओवरऑल बात कर रही हूँ ना। तो चूंकि इनके और इस्लाम के बीच में बहुत सारे मुफादात नहीं होते तो ये जल्दी मान जाते हैं। वैसे भी दुखी बंदा होता है, एक मजलूम होता है, तो उसको अल्लाह की बात समझ आती। सरदारों के और इस्लाम के बीच में लग्जरीज लाइफ, सूद और बैंकिंग और ABCD होती है। तो जिधर भी आप देख रहे थे ना, गुलाम मुसलमान हो जाते थे और इस जुर्म में बेरहम आकाओं की सफाकियों का निशाना बन रहे थे। अबू बकर सिद्दीक इन मजालिम को देख देख कर तड़प उठते थे, आखिर इनसे रहा ना गया और सबको खरीद खरीद कर उन्होंने आजाद कर दिया। यहाँ तक कि एक दिन इनके बाप ने, हजरत अबू बकर के बाप ने कहा, बेटे तुम तो बहुत कमजोर कमजोर गुलाम आजाद कर रहे हो, जरा ऐसे आजाद कराओ जो बहादुर हों, ताकतवर हों, वक्त पड़े तो तुम्हारे काम आए। क्योंकि उस दौर में ना गुलाम एक कमोडिटी थी, जैसे आप जूसर खरीद लाए और किसी को गिफ्ट करते हैं ना कि चलो भाई तुम जूस बनाओ, लोग गुलाम गिफ्ट में देते थे कि जाओ इसे जाके घर में काम करा लो। तो कहा कि कोई जरा ताकतवर करो, काम आए, मुसीबत में तुम्हारी मदद करें। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का जवाब आप सबको याद होगा, अब्बा जान मैं अपने लिए नहीं रब के लिए इनको आज़ाद कराता हूँ और मेरा मकसद तो सिर्फ अल्लाह को खुश करना है। और कहते हैं कि अल्लाह ताला को ये बात इतनी पसंद आई कि वमा लिया हदनिंदहु मिन नेमतिन तुज्जा इल्ला इब्तिगा वजही रब्बिहिल आला वलसौफ यरदा, सूरह लैल की आयत 19 से 21। कहते हैं किसकी शान नज़ूल में, हज़रत अबू बकर का ये वाक़िया है। और किसी का जिम्मा, किसी को एहसान नहीं जिसका बदला दिया जाए, इसे बस अपने बुलंदो बरतर रब की खुशी हासिल करनी और वो जल्द ही राजी हो जाएगा। तो बहरहाल ये मसाइब का सिलसिला जारी रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इस सीरीज में यहाँ तक ये सारा सुनाया। इंशाल्लाह ताला आपके लिए ये आखिरी जो दिन है दौरे कुरान के पूरे होने से लेके आगे के रमज़ान के एंड तक के दिनों में हम इस सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो चलिए, अख़लाक़े नबी में से जो चीज़ आज हमारे सामने आएगी वो प्यारे नबी का अख़लाक हज़रत उम्मे मक्तूम के नाते से, वो हम सूरत अब्बस के शुरू में देखेंगे। अब हम चलते हैं पारे पे। आप मेरे लिए पहले दुआ करें और मैं आप सबके लिए दुआ करूंगी, मैं हक अदा कर सकूं और आपके लिए यह कि आप जज्ब कर सकें। टू मैनी थिंग, हर सूरत एक नया मौजू। कहाँ हम एक सूरत को समझ के खुश होते थे, तो आज तो आपको ओवरवेलमिंग लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी होगा देखी जाएगी। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यतसाअलूना निन्नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून कल्ला सयालमून सुम्मा कल्ला सयालमून। ये लोग किस चीज़ के बारे में पूछगिछ करते हैं, इस बड़ी खबर के मुतल्लिक जिसके बारे में ये इख्तलाफ कर रहे हैं। यकीनन ये भी जान लेंगे और फिर बिल यकीन इन्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। क्यामत, क्यामत, घर घर में अल्लाह के नबी के खिलाफ बातें हो रही थी, प्रोपेगंडे। जिधर चार लोग बैठते, तुमने सुना ये क्या कहता है अब्दुल मुतल्लिब का पोता, ये तुमने सुना है ये मोहम्मद क्या कहता है, कहते हैं मरने के बाद जियोगे तो ये होगा वो होगा, तो आज तक तुम्हारे ये नहीं, कोई कहता जिंदा करो, कोई कहता कुछ करो। यानी इतना अकीदा आखिरत बिगड़ चुका था कि लोगों को यकीन नहीं था। लिखिए, मुसलमान थे, हजरत इस्माइल की नस्ल से थे, इब्राहिम के साथ ताल्लुक जोड़ते थे। आज अब बड़ी रौनक से कहते हैं मुशरिकीने मक्का, कुफारे मक्का, हालांकि वो मुसलमान मक्का थे। फिर क्या हुआ, रिवायती मुसलमान बन गए। उनका अकीदा कापियों में किताबों में रह गया और ज़ाहरी ज़िंदगी रस्मों रिवाज में चली गई। बाप दादा के तौर तरीके अंधी तकलीद का शिकार हो गए। जे आपके अब्बा ने कहा, ये मेरे अब्बा ने कहा, यही दीन बन गया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सच्चा दीन खोला तो लोगों को हैरत हुई। एग्जैक्टली आज भी यही है। आप में से कम अज़ कम 50% जिद्दा लोगों को, मैं नहीं कह सकती, अल्लाह ने अगर वाकई आप लोगों के तौहीद को महफूज किया है तो इस मुल्क में आकर कम अज़ कम आपको तौहीद और शिर्क का फ़र्क तो वाज़े हुआ ना, नमाज़ों की अहमियत हुई ना। यहाँ तो मुझे आपको मैं सिर्फ देखती तो मुझे तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए था। ऐसे ही लगता है नेक लोगों की ज़मीन, बड़े मुत्तकी परहेजगारों का मुल्क, लेकिन मेरे सामने चूंकि वर्ल्ड वाइड लोग खड़े होते हैं तो मैंने तो कुरान का हक ही अदा करना है। लेकिन आम तौर पर इंडो पाक कल्चर की हमारी नई नई प्यारी प्यारी बहनें जो ही कुरान में आती हैं, सबसे पहले उनके दिमागों में ये 10-20 सवाल जो इस दौरे कुरान में भी उठे होंगे। अच्छा ये भी ठीक नहीं, अच्छा ये तो मेरी अम्मा करती थी, अच्छा ये भी नहीं है, अच्छा ये भी सुन्नत नहीं, ये बिदत है, ये बिदत क्या होती है, अच्छा ये क्या, ये शिर्क है, अच्छा बाबा जी को सलाम करने जाते हैं, ये सवाल उठते हैं। क्यों, असल दीन इस वक्त हमारा भी फॉग में चला गया और वी नीड टू रिमूव द फॉग। आज हम अपने जहनों को देखें तो बाप दादा का दीन हमारा चारों तरफ फिर रहा है और बाकी दीन कुरान सुन्नत का किताबों में रखा है। अल्लाह हमें इन्हीं किताबों से जोड़ दे। अब आगे कायनात की निशानियों से बताया जा रहा है कि तुम कैसे कहते हो क्यामत आना मुहाल है, कभी तुमने दुनिया को नहीं देखा। अलम नजअलिल अर्ध मिहादा वल जिबाल औदादा वखलकनाकुम अज़्वाजा। क्या हमने जमीन को फर्श नहीं बनाया और पहाड़ों को मेखे नहीं बनाया। क्या मतलब कि कायनात में इतनी बड़ी निशानियां जो हैं ये दिखा नहीं रही कि वो रब हर चीज पे कादिर है, और हमने तुझे जोड़ा जोड़ा पैदा किया, इसकी यहाँ क्या जरूरत थी। दुनिया का जोड़ा आखिरत, जिंदगी का जोड़ा मौत, रात का जोड़ा दिन, यानी कायनात में अल्लाह की हस्ती के सिवा बाकी बेजान और जानदार चीजें तो जोड़ों में है, खुशी के साथ गम में। तो देखो दुनिया है तो फिर इसका जोड़ा भी तो होगा। और हमने तुम्हारी नींद को आराम का सबब बनाया और रात को हमने पर्दा बनाया और दिन को हमने वक्त रोजगार बनाया। इस पे काम कीजिए, आए ऐसा ऐसा चेंज लाइए। अपने सोने जागने की रूटीन ठीक नहीं करेंगे तो आप हेल्दी इंसान नहीं होंगे, प्रोडक्टिव इंसान नहीं होंगे। मुआशरा जो भी करे कहे, लेकिन आपको अपने घर में अपने असूल बनाने पड़ेंगे। वही लोग फ्रेश रहते हैं, वही लोग हेल्दी रहते हैं जो वक्त पे सोते हैं और वक्त पे जागते हैं। और ये हमारे दीन का स्लोगन था जिसको गोरों ने ले लिया, अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड। आज हम बिल्कुल उसकी ऑपोजिट तस्वीर बने बैठे हैं, इसीलिए फिर हमारी जिंदगी में प्रोडक्टिविटी नहीं है। और तुम्हारे ऊपर हमने 7 मजबूत आसमान बनाए और एक चमकता हुआ रोशन चिराग, क्या है ये, सिराजम व हाजा। सूरज पैदा किया और बदलियों से हमने बकसरत बहता हुआ पानी बरसाया, ताकि इससे अनाज और सब्जा उगाए और घने बाग भी उगाए। इन्ना यौमल फसली का नमीका था यौम युनफखु फिस्सूरी फतातूना अफवाजा। बेशक फैसले के दिन का वक्त मुकर्रर है, जिस दिन के सूर में फूका जाएगा, फिर तुम फौज दर फौज चले आओगे और आसमान खोल दिया जाएगा। तो इसमें दरवाजे दरवाजे हो जाएंगे और पहाड़ चलाए जाएंगे, बस वो सराब हो जाएंगे। घर में को बहुत बड़ा फंक्शन हो ना, तो घर का सारा सामान हटा दिया जाता है, जगह बना दी जाती है, कुशाइश कर दी जाती है। क्यामत का दिन भी एक बिग गेट टुगेदर है, क्योंकि जमा ना कुमल अव्वलीन वल आखरीन, आदम से लेके आखिरी बंदे तक ने तो जमा होना है। तो पूरी दुनिया की ना, जिसको कहते हैं कि सेटअप बदल जाएगा, पहाड़ों को हटाओ रस्तों से, इसको कर दो ये कर दो, ताकि बहुत सारे लोग आ जाएं और वहां कोई टीला टिब्बा तक नहीं होगा। सूरत कहफ में आप पढ़ते हैं, क्यों? कि कोई उसके पीछे छुप ना जाए, को हमारी नजरों से पीछे ना हो जाए। इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा लित्तौगीन मआबा लाबिसीन फीहा अहकाबा। बेशक दोजख घात में है। घात क्या होता है? शिकारी शिकार को देख रहा है, जहन्नम सबको देख रही है। सरकशों का ठिकाना वही है, इसमें वो मुद्दतों पड़े रहेंगे, न कभी इसमें खुनकी का मजा चखेंगे न पानी का, सिवाय गर्म पानी और बहती पीप के। क्यों? जजाऊं विफाका, इनको पूरा पूरा बदला मिलेगा। इनका कसूर क्या था? इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा वकज्जबू भी आयातिना किज्जाबा। इन्हें तो हिसाब की तवक्को ही ना थी और बेबाकी से हमारी आयतों को झुटलाते थे। देखिए, यहाँ कोई और अमाल की बात नहीं है, बस अकीदे आखरत खराब था। ए जहां मिठा त्यो किन्ने डिठा, पंजाबी में कहते हैं ये दुनिया बहुत मीठी है, अगली किसने देखी है। और कोई बड़ी अदा से कहता है दुनिया नकद है जी ले लो, आखिरत उधार है, और उधार किसने चुकाया? नाउज़ु बिल्ला। आज कियामत के नाम पे जोक्स बने हुए, अल्लाह कहते हैं इनको लग बता जाएगा क्या। वकुल्ल शयइन अहसैनाहू किताबा, हमने हर एक चीज को लिख कर शुमार कर रखा है। फजूकू फलन नजीदकुम इल्ला अजाबा, अब तुम अपने किए का मजा चखो, हम तुम्हारा अजाब ही बढ़ाते रहेंगे। कितना बुरा अंजाम, क्या मिला? 20, 30, 40, 50, 60, 70 साल के बाद तो गुनाह में भी लज्जत खत्म हो जाती है। कोई कहता गाना छोड़ दिया तो अब समझ ही नहीं आता, तो करना क्या? अब वो जज्बात ही नहीं रह गए तो आपने गाने फिल्में देख के करना क्या? फिर भी छूट जाए, अल्लाह माफ करे, आज तो बुढ़ापे में भी नहीं छूटते, उनका तो बल्कि ज्यादा वक्त ही टीवी पे गुजरता है। सोचिए, जिंदगी एक आपके पास अनमोल तोहफा था, तो चलिए जिसने भी जिंदगी बर्बाद की थोड़े दिन थे, लेकिन वहां का हाल देख लीजिए। काफिर ने कुफर किया, मुशरिक ने शिर्क किया, बिदती ने बिदत की, कबायर वाले ने कबीरा गुनाहों का इर्तकाब किया, अंजाम देख लीजिए कितना बुरा। और इसके बरक्स ऐसे लोग माशाल्लाह, जो आप जैसे दीन का शौक रखने वाले, जज्बे रखने वाले, और अल्लाह मेरे गुमान के मुताबिक आपको इससे भी अच्छा कर दे और मुझे आपके गुमान से भी अच्छा कर दे, उनका इंजाम इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा हदाई कवाना पा कवाइबा तुरौबा वका संदिहाका। यकीनन परहेजगार लोगों के लिए कामयाबी है, बागात हैं, रंगूर हैं, और नौजवान कुंवारी हम उम्र बीवियाँ यानी औरतें, और छलकते हुए जाम शराब हैं। वह ना तो वो बेहुदा बातें सुनेंगे और ना ही झूठी बातें सुनेंगे। क्यों इतना अच्छा इंजाम? बीवियां मिल रही, हम उम्र मिल रही, दुनिया में हो सकता है एज डिफरेंस हो, और मियाँ बीवी तो होते ही एक दूसरे से फर्क है, क्योंकि एक तो औरत है एक मर्द है, अल्लाह करे अब अगली नस्लों में भी यही रहे। दूसरी बात है मिजाज देखेंगे, 98% कपल्स में मर्द अगर दरिया है ना तो औरत ब्रिज है, मर्द अगर खुले हाथ का है तो औरत तंग हाथ की है, अगर औरत खुले दिल की है तो मर्द जरा खींचने वाला हाथ है। हर पहाड़ है ना उसके साथ खाई भी होती है, अल्लाह ने ये एक फितरत का निजाम रखा है। इसी तरह एक डोमिनेंट है तो एक नीचे है, एक गुस्से वाला है, एक ठंडे मिजाज का है। जन्नत में बिल्कुल लाइक माइंडेड होंगे। अब मैं आपको इस वक्त दुखी नहीं करना चाह रही पूछ के कि आपका क्या ख्याल है कि आपकी सही जगह शादी हुई थी, और इसका एक जुमले में मैं अक्सर सवाल कर लेती हूँ कि अगर आपको दोबारा मौका मिले तो क्या आप इसी शख्स से शादी करेंगी? जी, मैं आपकी खामोशी समझ गई। चलिए, अल्लाह सलामत रखे। देखिए, कोई और होता तो उसमें कोई और खराबी होनी थी, यही ठीक है। बोले यही ठीक है, बोले आज घर जाके बोलेंगी आप ही ठीक है। उन्हें कहना तुम्हें इतने सालों के बाद ये बात समझ आई है। जी, अल्लाह के फैसले बेहतरीन होते हैं, अल्लाह ने जो रखा वही दुरुस्त रखा। आप देखिए, मर्द को गर्मी लगती, बीवी को ठंड लगती, वो उसको एसी चलाता, वो बंद करती, ये सारा वक्त चलता नहीं रहता, चुक 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 चुक, टुक टुक टुक। एक को मर्चा चाहिए, एक को फीका चाहिए, फीके वाले का मर्चों वाला आ गया, मीर मर्चों वाले को उसकी वजह से फीका खाना पड़ा। अब क्या करें, ये कोई गम है? छोटी छोटी बातें हैं। तो खुश रहें, अपने घरों को जन्नत बनाएं, ताकि आपको जन्नत के असल घर भी मिल सके। अब बदला किस चीज का, ये ले लीजिए, जजा में रब्बी का तान हिसाबा, इनको तेरे रब की तरफ से इनके नेक आमाल का ये बदला मिलेगा जो काफी इनाम होगा। नोट करिए, जजा मिन रब्बी का, आपके मेरे अमल इस काबिल नहीं है कि जन्नत मिले। हदीस है, किसी को उसके अमाल से जन्नत नहीं मिल सकती, हाँ अल्लाह अपनी रहमत की चादर डाल दे। कहा अल्लाह के नबी, आपको भी? कहा मुझे भी, मेरा रब भी अपनी रहमत में ढांपेगा तो जन्नत मिलेगी। क्योंकि आप इसको समझिए, या अभी समझ लें, क्योंकि पूरे पारे में इस पे बात होनी है। तो आप किसी स्टोर में जाते हैं तो प्राइस टैग लगे होते हैं ना, अमूमन आपको पता ही होता है कि ये महंगी चीज़ है, ये सस्ती चीज़ है। लेट सी, अगर कोई बड़ा सा स्टोर, यहाँ के तो स्टोर्स भी बहुत बड़े हैं, एक आध मुझे भी दिखाए इन लोगों ने, बंदा ही घूम जाता है उसमें जाके, समझ ही नहीं आती लेने क्या, चलो वापस, अभी कुछ नहीं समझ आ रहा, ये कैफियत होती है ना। अब आप सोचिए कि रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है वहाँ, एसी रखा हुआ है, और इसी तरह कोई और एक महंगी सी चीज़ रख लें जहन में, कंप्यूटर रखा हुआ है, अब उस पर प्राइस टैग क्या लगे हुए हैं? ये एसी 5 रियाल का, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, ये कंप्यूटर, ये कह लीजिए कि 25 रियाल का। अच्छा, साथ ही आप दूसरे सेक्शन में नजर डालते हैं तो वहाँ आपके क्रूद हैं, आपके वो सफाई वाले चीजें हैं, मॉप है, वाइपर है, कोई डोंगा है, कोई प्लास्टिक की बाल्टी है। अच्छा, आप कहते हैं ये भी तो लेने थे ना, देखूं। अब जब आप डोंगा देखते हैं तो उस पर 2 मिलियन कीमत लिखी हुई है, आपने जब वाइपर उठाया तो उस पर 25 मिलियन लिखा हुआ है, तो आप क्या सोचेंगे? या तो इनका दिमाग खराब है या मेरा खराब है। आप फौरन बुलाएंगे उनको कि भाई ये क्या हुआ हुआ है। बस ये दुनिया है, ये जो नफ्स हमारा और शैतान और ये सारी चपकलश है ना, महंगी चीजों को सस्ता और सस्ते को महंगा करके दिखाता है। जन्नत की चीजें कीमती बहुत है। यहाँ एक शर्ट आपको मेरे हाल 100, 150, 20, 25 कितने रियाल में मिल जाएगी? जन्नत की एक एक शर्ट मिलियंस रियाल्स की है, और वहां करेंसी डॉलर नहीं, पाउंड नहीं, क्रोन नहीं, रियाल नहीं, रुपया नहीं, वहां की करेंसी का नाम है गुड डीड्स। नेकी कौन सी चीज है, याद रखिए, अभी आगे आ रहा है सूरत इन्फितार में, तो वहां भी समझा दूंगी, यहां भी समझ लें कि नियत अल्लाह की रजा हो और तरीका नबी का हो। आमनू वामिलुस सालेहात, लिल्लाहियत इखलास, सिर्फ अल्लाह से बदला लेना है आपने किसी नेकी का, और तरीका कार नबी का, बस। अब जब आप नेकियां जमा करते हैं, आप अपने ऊपर लेकर सोचिए कितने नेकियों के मौके आए और मैंने खो दिए, कितने ऐसे मौके थे कि मैं जन्नत में मजे मजे की चीजें खरीद सकती, वहां कह दिया जाएगा तू वो कर ही नहीं सकी, तू सो गई थी, तेरा नेकी का मौका चला गया, तू किसी से लड़ पड़ी रोजा रख कर, तेरे रोजे का सवाब चला गया, और तूने इतनी मेहनत से रात को इबादत की थी ना, वो फलां गीबत की नजर चली गई, छुट्टी कर, कितना रोना आएगा। दुनिया में क्या किसी का वॉलेट चोरी हो जाए, क्या किसी का पर्स चोरी हो जाए, उसके पैसे रुपए चोरी हो जाए, जो वहां बंदे की चोरी की हुई नेकियों का गम होगा, अल्लाह ताला आपको मुझे उसकी फिक्र लगा दे। तो रब ने अपनी अता से जन्नत देनी है, लेकिन हमारी कोशिशें देखनी है। अब आप कहेंगे चलो छुट्टी, हमारी कोशिशों से तो कुछ होना ही कोई नहीं, तो फिर छोड़ दें, तो लिख लें रब की रहमत किस पे होनी है, ये भी अल्लाह का कानून ने हिदायत और कानून ने रहमत, देख लीजिए, बंदे की कोशिश को अल्लाह देखेगा, ये कोशिश बड़ी करती है, ये टूटी फूटी सा है, ये है वो है। फिर मैं आपकी समझ के लिए, अल्लाह के लिए नहीं, आपके लिए मिसाल देती हूँ। आपका बच्चा है 10 साल का है, उसको बहुत शौक है कि उसको एक छोटा सा लैपटॉप मिल जाए, वो रोज जो आप पॉकेट मनी उसको देते हैं ना, तो वो खाना नहीं खरीदता, वो पैसे जमा कर लेता है, ईद पे ईदी थी, वो खर्च नहीं कर रहा, वो जमा कर रहा, क्यों बेटा जी? नहीं मामा, मैंने लैपटॉप लेना है, मुझे काम करना है उस पर स्कूल का। अब आप सोच रहे हैं ये बेचारा अपनी जिंदगी को मुश्किल में डाल रहा है, कर रहा है, और एंड पे उसके पास कितने पैसे हुए, 200 रियाल बने। आप कहती हैं अच्छा ठीक है, कर रहा है तो करने दो जमा। खैर, एक 6 माह गुजर गए, साल गुजर गया, अब उसके पास कितने पैसे जमा हो गए, उसके पास कह लीजिए कि 400-500 रियाल जमा हुए। एक दिन आपको उस पर बड़ा ही प्यार आता है, आप कहते हैं चलो देखते हैं जाके दुकान पे लैपटॉप कितने का मिलता है। अब पहली ही दुकान पे बड़ा बेसिक लैपटॉप आपने देखा, वो तो 2000 रियाल का है, और इस बेचारे के पास अभी सिर्फ 500-600 रियाल जमा हुए हैं हर रोज की सरफों से। आप बच्चा कहते हैं मामा आई कैन टेक इट, मैं नहीं ले सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। तो आप कहते कमल, दुकानदार से कहते हैं ओके ये पैक करो, चलो बेटा दो अपना गल्ला खोलो। वो खोलेगा वो 6 नहीं 7 800 ही निकल गया। बाद में आप क्या कहते हैं, ये लो मेरा कार्ड ले लो, बाकी पैसे इधर से ले लो। सच बताए माँ बाप ऐसा करते हैं ना, बीसियों बार करते हैं। तो जब माँ बाप ऐसा कर सकते हैं तो वो हस्ती जिसने माँ बाप जैसी नेमत दी वो ये नहीं करेगा। ये है जजा में रब्बी का तान हिसाब। अच्छा हिसाब है, कई लोगों को यहाँ गलती लगती है, गैर हिसाब। अल्लाह कहता है मुझे ये भी पता है कि किसके 2000 में से 1500 मैंने डालने हैं और किसके सिर्फ 2000 में से मैंने 20-25 ही डालने हैं। ताल्लुक बिल्ला मजबूत कीजिए। दुनिया में भी अल्लाह यही करता है, हमें समझ ही नहीं आती सारी उम्र पैसे के पीर, मटीरियलिज्म के पीर, रोटी रोजी पेट खाने पीने में रोते रह जाते हैं, अपनी जात पे हजारों लाखों लगाते हैं, और जब अल्लाह का नाम आ जाता है, अल्लाह की बात आती है, तो हमारे जायचे ही बदल जाते हैं। एक वक्त का हमारा खाना कई दफा उससे बहुत ज्यादा होता है जितने में मैं कोई मिसाल अल्लाह के लिए कोई किताब लेनी पड़ती, कापी लेनी पड़ती, पेन लेना पड़ता, टैक्सी को किराया देना पड़ता। तो हम सारा प्लस माइनस जब अल्लाह के मामले में करेंगे ना, तो फिर अल्लाह ने ये जो कह दिया ना कि मैं फिर तुम्हें हिसाब के साथ ही दूंगा, मुझे पता है कि किसके साथ कैसा मामला करना है। खुले हाथ से अल्लाह के रस्तों में निकला करें, हिसाब ना किया करें अल्लाह के मामलों में। नेकियों के मौके देखें, हजरत अबू बकर सिद्दीक जमा तफरीक करके नहीं थे गुलाम आजाद कराते, उन्होंने बिलाल और उसके साथ और गुलामों को जो आजाद कराया ये सोच के नहीं कराया था कि कल चलो ये पैसे पूरे कर लूंगा, ये मुझे और कहाँ से मिलता। नहीं नहीं उमैया मैं नहीं बिलाल तुमसे खरीदता, ये तो इतना महंगा तुम दे रहे हो, मैं ले लूंगा कहीं से जाके और बुरा। ये अल्लाह के रस्तों में नहीं चलता, और जो करेगा फिर अल्लाह भी उसके साथ ऐसे ही जमा तफरी आना पाई करके उसके हाथ में देगा। सहाबा का नेकियों के मामले में दिल ऐसा था जैसे आज हमारा अपने बच्चों पे पैसा खर्च करने के मामले में, उनकी एक ख्वाहिश पे हम 100 नहीं 1000 लगा देते हैं। बेकार याद तुम्हारे घरों की इकट्ठी कर देना तो यकीन करें हमारा घर साफ हो जाए। एक खिलौने की जगह 10 खिलौने हमारे बच्चे के पड़े, कीमत जरा उसकी जमा करें आप इंडिया पाकिस्तान के पैसों में, उतने में हो सकता है पाकिस्तान में किसी को असली गाड़ी ले दें जितने के आपने बच्चों को खिलौने लेके दिए। हमें अपनी जात पे कम से कम, अल्लाह की जात अल्लाह के रस्ते में ज्यादा। कॉस्ट देखिए, जात देखिए, क्या चीज कहाँ से मिल रही है, ये पैसा किसको निकल रहा है। आप देखिए ना कि आप एक मॉल में जाकर कभी भी बहस करते हैं कि ये आपने जो 1100 लगाया, चलिए 100 तो छोड़ दें, और आप एक गरीब रिक्शे वाले के बाबे के साथ रो रहे हैं बहस कर रहे हैं कि नहीं मैंने तुम्हें 100 देना है 200 नहीं देना। आप वो सब्जी वाले से पुदीना की गुच्छी पकड़ के भाग जाते हैं, आप कह नहीं नहीं ये तो फ्री दो। यानी हमारा सारा जोर गरीबों पे चलता है और दीन पे चलता है, जबकि अबू बकर सिद्दीक जैसे लोग जो जन्नतें ले गए, अल्लाह ने फिर उनको क्यों नहीं जन्नतें देनी। हर दरवाजे से सिद्दीक अकबर को बुलाया जाएगा क्योंकि वो नेकी का हर दरवाजा खुला रखते थे। हम अपनी पसंद का एक थोड़ा सा खोलते फिर बंद करते, फिर खोलते फिर बंद करते, फिर अफसोस करते, आगे जाते पीछे जाते, इतने में ही फिर हमारी कह लीजिए कि फ्लाइट जन्नत की मिस हो जाती है। अब अल्लाह की कुदरत देखिए, रब्बि समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा अर्रहमान। उस रब की तरफ से मिलेगा जो कि आसमान और जमीन का और जो कुछ इनके दरमियान है, इनका परवरदिगार है और बड़ी बख्शिश करने वाला है। अगला जुमला जरा दिल से सुनिए, ला यमलिकूना मिन्हु खिताबा, किसी को उससे बातचीत करने का इख्तियार ना होगा। इट्स नॉट इजीली अप्रोचेबल, आज है। वैजा साल कई बाद यन्नी फैन्नी करीब, उजी उदा वतदा इजादानी फल यस्तजीब उली वल यू मिनू भी लाल्लोम यर्शदुन। ये सूरह बकरा की आयतों में अल्लाह ने कह दिया था, यहाँ मेरे से जितनी मर्जी बातें करो, क्यामत के दिन मेरे से कलाम ना करना। अम्बिये कराम तक कांप रहे होंगे उस दिन। और कई लोग कहते हैं मैंने हंस के अल्लाह को दिखा देना है, मैंने अल्लाह को लाड दिखा देना, ये यहाँ कर लीजिए वहां नहीं चलेंगे। अल्लाह इतने गुस्से में होगा क्यामत के दिन, कोई बात करने की जुरत नहीं करेगा। और क्या होगा, यौम यकूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ्फा, जिस दिन रूह और फरिश्ते सफे बांध कर खड़े होंगे तो कोई कलाम ना कर सकेगा मगर जिसे रहमान इजाजत दे दे। पहले से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, परमिट लेना पड़ेगा, जैसे एतिकाफ का और बाकी चीजों का परमिट लेते हैं ना। आपको अगर रियाजुल जन्ना में जाना है तो परमिट चाहिए ना, एतकाफ वाले परमिट मांग रहे हैं ना, अल्लाह कहते हैं मैं जिसके लिए इजाजत दूंगा उसके लिए तुम सिफारिश कर सकते हो। और ये कॉन्सेप्ट हमने पीछे समझा था कि सिफारिश सिफारिश है, हुक्म नहीं। सिफारिश करने वाला अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, फैसला अल्लाह पहले करता है। दुनिया की सिफारिशें फैसला होने से पहले होती हैं, फैसला बदल जाता है, जज साहब लिख देते हैं अब क्या करें, वजीर आजम साहब की सिफारिश आ गई। आखिरत में फैसला पहले होगा, सिफारिश बाद में आएगी। अल्लाह डिसाइड करेगा किसको बख्शना है किसको नहीं, किसकी नेकी को रखना छोड़ना करना। और चूंकि वो अलीमुन बिज़ाते सुदूर है, अंदर बाहर के एक एक मामले को जानता है, वो इजाजत दे देगा। और जो इजाजत कर रहा होगा वो क्या करेगा, वो काला सवाबा, और वो ठीक बात निकालेगा। 2 दिन पहले भी बात हुई थी ना, साहब साहिब, ये वही लफ्ज है, इसी से लफ्ज मुसीबत है, इसी से लफ्ज साहिब राय है, यानी वो ठीक ठीक सीधी बात करेगा, कोई हैंकी पैंकी नहीं चलेगी। एक्चुअली एक्चुअली सीधी बात करो, क्या कहते हो, ये सुन के बंदे की जान निकल जानी है। जालिकल यौमुल हक, ये दिन हक है, अब जो चाहे अपने रब के पास नेक अमाल करके ठिकाना बना ले। इन अंजरना को मजाबन करीमा यौम यंजुरुल मरुमा कद्दमत यदा व यकूलुल काफिरु या लैतनी कुंतु तुराबा। हमने तुम्हें अनकरीब आने वाले अजाब से डरा दिया और चुकन्ना कर दिया, वॉर्न कर दिया, अवेयर कर दिया। जिस दिन इंसान अपने हाथों की कमाई को देख लेगा और काफिर कहेगा काश मैं मट्टी होता। जाइए, अब किताब तो खुली नहीं जिसमें लिखा हुआ था, आप जरा सोचिए और दिल से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। कितना बड़ा एहसान है नबी का कि ये कुरान अल्लाह से लेके हमें दे दिया, लेके अपने ही तक रखा होता। जैसे आज हम में से बहुत सारे दीन को लेके अपने तक रख लेते हैं, दूसरे को नहीं शेयर करना कि नहीं 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 फिर वो नहीं, मैं उनको खुद ही बताऊंगी बाद में, उनको नहीं ये लिंक देना कहीं वो ना सुन ले, फिर मेरी बातें कम हो जाएंगी और पता चल जाएगा कि मैं कहाँ से लेके आती हूँ। अच्छा जी, अगर अचानक मरते, लेकिन आप सोचिए मौत, किसी ने कहा कि इस्लाम ने तो मौत जैसी तल्ख चीज को भी खूबसूरत बना दिया, क्योंकि मोमिन तो मौत का इंतजार कर रहा होता है, उसकी रूह तो जिसमें एक पिंजरे के अंदर बंदे परिंदे की होती है, क्योंकि उसको तो निकलना है, रूह का परिंदा उड़े और वो निकल जाए। तो ये मुसलमान तो मौत से भी प्यार करते हैं जिंदगी की तरह, क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि अच्छे काम करके जाने वाले की मौत और मौत के बाद की जिंदगी असल जिंदगी भी वही है, ईशा तो रादिया वही होगी। तो मैं दुनिया में जीकर क्या करूंगा? अब अगर ये सब नबी ने ना बताया होता, और हम भी ऐसी एग्नोस्टिकिज्म, दो लफ्ज होते हैं, एक होते हैं एथियज्म, वो अल्लाह को नहीं मानते, और दूसरे होते हैं एग्नोस्टिक्स, वो कहते हैं जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, नो पर्पज ऑफ लाइफ। अब जब वो बंदा दुनिया से जाता है और आ गई मौत का फरिश्ता दिखता है, उसके साथ क्या होगा? अचानक टीके ही लग जाए, इंजेक्शन लग जाए, तो बंदे की जान नहीं निकल जाती? जिस बंदे को इस बात का यकीन आ गया कि इस दुनिया में मेरा एक क्लिक भी जो लगेगा ना, ये वहां जाकर तो लेगा। और आपको तो क्या, जैसे मीजान बन गए, ऐसे तराजू डिजिटल आ गए हैं कि आप एक खाली सफा वे करें और उसके बाद पेन से सिर्फ एक डॉट इंक का लगाकर उस पर डालिए तो वो डिफरेंस दे देता है। तो अल्लाह के पैमाने तो फिर इससे भी स्ट्रांग है। आइए देखते हैं तदब्बुर और अमल के नुक्ते। दुनिया की चंद रोजा खुशी के लिए अपनी आखरत को खराब नहीं करना, बोलिए इंशाल्लाह। जहन्नुम से अल्लाह की पनाह मांगते हैं, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अपने जाने और अनजाने में किए गए गुनाहों पर माफी मांगे, चलिए आइए साथ ही बख्शिश की दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़म्बी कुल्लहू दिक्कहू व जिल्लहू अव्वलहू व आखिरहू। अल्लाह हमारे सारे गुनाह माफ़ फरमा दे। कुरान पाक से रहनुमाई, अल्लाह की नेमतों का बकसरत शुक्र अदा करें, सब बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तेरी हर नेमत पे शुक्र, हर काम करते हुए ये देखना है कि इससे अल्लाह ताला राजी होगा कि नाराज। करते हैं वादा खुद से, शादी पे जाते हुए भी, मेहंदी पे जाते हुए भी, उपटन में जाते हुए भी, करेंगे इसका इरादा? मियाँ साहब कहीं जाने पे मजबूर करें, सास सम्मा कुछ कह दें, करेंगे इसका एहसास? अल्हम्दुलिल्लाह, फिर बच गए, फिर आपको दौरे कुरान से अल्हम्दुलिल्लाह एक लाइन ऑफ एक्शन मिल गई। यौमुल हशर में इंसान अपने हम मिजाज लोगों के साथ होगा, दुनिया में ही अच्छे लोगों को अपना साथी बना लें। गौर व फिक्र, अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म नहीं करना, इनसे जन्नत कमानी है। नींद नफा बख्श राहत का सबब है, बशर्ते के वो सही वक्त पे हो। बेवक्त की नींद बंदे को और थकाती है, आपको पता ही होगी ये बात। जहन्नम के ऊपर से गुजरे बगैर जन्नत में नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए फिक्र करनी है कि वहां अगर गिर गए तो क्या बनेगा। जन्नत सलामती का घर है, अस्सलाम से सलामती मांग ले। तो आइए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें जन्नत में सलामती के साथ दाखिल कर देना, आमीन।